शांति, दर्शनीय मूरत निर्मलता की देवी, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। दीदी हमारे मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। आपका लौकिक जन्म 1935 में हुआ और इस यज्ञ का जन्म 1936 में हुआ। यज्ञ से पहले ही बाबा ने आपको तैयार कर दिया। आप मुंबई में रहते मेडिकल स्टडीज की आपने, और 1962 में जब आपकी स्टडीज पूरी हुई आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला, और फिर तो मेडिकेशन माना मेडिकल की प्रैक्टिस भी करते रहे और मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस करते रहे। 1966 में बाबा की राय से आपने क्लिनिक भी खोला अपना और सेवा केंद्र भी। आप यज्ञ की प्रथम वो कन्या है जिसे लौकिक पिता ने सेवा केंद्र दहेज के रूप में दिया, और उसके बाद 66 से लेकर 71 तक आप मानवता की सेवा दोनों रीति से करते रहे, मेडिकेशन और मेडिटेशन इन दोनों से सेवा करते रहे। और फिर 71 में बाबा ने आपका सिलेक्शन किया विदेश सेवाओं के लिए। 71 से लेकर 78 तक यूके, यूनाइटेड किंगडम लंदन, मॉरिशस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि आदि विदेश की धरनियों पर जाकर आपने खूब सेवाएं की। और 78 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया, स्थायी रूप से वहां रहने लगे, और 78 से लेकर 2008 तक आपने वहां रहकर एशिया पैसिफिक रीजन में बाबा की सेवाओं का खूब विस्तार किया। आज की डेट में इस रीजन में 17-18 देश हैं जहां बाबा के सेवा केंद्र हैं, बाबा के बच्चे हैं और प्रतिवर्ष मधुबन में आते हैं। तो आप एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर हैं, और फिर 2009 में आपको यज्ञ ने वापस भारत ज्ञान सरोवर की धरनी पर बुलाया और ज्ञान सरोवर अकेडमी का डायरेक्टर पद का कार्यभार आपके कंधों पर आया। और यूं तो हम देखते हैं आजकल हमारी सभी लगभग दादियां, एक दादी रह गई है, बाकी सभी दादियां तो अव्यक्त हो चली है। तो यज्ञ का कारोबार ज्यों ज्यों दादियां अव्यक्त जा रही है और यज्ञ का कारोबार बढ़ रहा है, तो दीदी के कंधों पर जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही है। अब वर्तमान में हमारे यज्ञ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है, लेकिन जितनी ज्यादा जिम्मेवारी उतना ही उपराम अवस्था, कर्मातीत अवस्था के नजदीक भी जा रहे हैं। जितना ज्यादा बिजी उतना ही ज्यादा एजी, जितनी ज्यादा ज्ञान की गुह्यता उतना ही बहुत कम शब्दों में उसका स्पष्टीकरण। तो बहुत ही मितभाषी हैं, बहुत ही अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन हमेशा दिए रहते हैं और वेस्ट से सदा मुक्त रहते हैं। तो ऐसी धारणा मूर्त दीदी जिन्होंने दादियों की, मम्मा की, बाबा की पालना ली है, उनसे हम सुनेंगे आज कि शूद्र से ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की क्या युक्तियां हैं। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। ब्राह्मण जीवन हमें बहुत भाग्य से मिला है। सारी दुनिया भक्ति कर रही है, कितना इधर उधर भाग दौड़, गुरुओं के पास मंदिरों में सत्संगों में करते रहते हैं, और हमें सहज ही बाबा मिल गया। आप में से कितनों ने बहुत मेहनत की है, यात्रा वगैरह की है, जरा हाथ उठाना। हाँ, भक्ति की यात्रा करते हैं, थोड़े हैं, घर बैठे भगवान मिल गया। कितना भाग्यशाली है हम। तो हम शूद्र थे, ब्राह्मण बने, अभी फरिश्ता बनना है। तो यहां से फरिश्ते की ड्रेस ले जाना, जब भी जहां भी जाते हो अपने को फरिश्ता समझना, और सामने वाली व्यक्ति को भी फरिश्ता समझना। तो जब शूद्र थे तो हम क्या थे, क्योंकि शूद्र पने का संस्कार कभी कभी रहता है हमारे में। तो जब शूद्र थे तो बोलना रफ डफ, बड़े आवाज से, जरूरत से ज्यादा बोलना, व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, पर दर्शन, झरमुई जगमुई, जोर से हंसना, ये हमारे संस्कार थे। चलना कैसा होता था, फास्ट दौड़ना, चप्पल का शोर आते हैं आप तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ फलाना आ रहा है। इसमें भी विदेश में तो बहुत ही दौड़ भाग करते हैं, देरी से उठेंगे, जल्दी जल्दी तैयार होंगे और दौड़ेंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। एप्पल या कुछ रास्ते में खाते खाते जाएंगे, खान पान जो भी आया स्वार्थ के वश खाएंगे, नियमित नहीं खाना पीना, जब भी ऑफर मिली खा लिया। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि अपने को वेस्टर्नाइज दिखाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली विदेश में जाएंगे ना तो क्या करेंगे, सिगरेट शराब डांस आदि आदि करेंगे। ड्रेस की मर्यादा नहीं, फैशन एक्टर और एक्ट्रेस की कॉपी करेंगे, उनके जैसा बोल चाल एक्ट करेंगे, सोएंगे देरी से, उठेंगे भी देरी से, और उठकर क्या करेंगे, पहला न्यूज़पेपर, कई है उनको तो क्या है, विदेश में तो बेड में ही चाय पहुंचानी पड़ती है पत्नी को। मुंह में फंसे रहेंगे, लोभ वश चोरी ठगी झूठ, दृष्टि वृत्ति खराब, चेहरा कभी उदास कभी खुश, कभी मूड ऑफ बदलता मूड, गुस्सा रूठना, चेहरा जल्दी बिगड़ जाता है, हाव भाव बदलते रहते हैं, तो नेचुरली ज्ञानी नहीं है, चेहरा तेज नहीं, आर्टिफिशियल मेकअप करना पड़ता है, और धन और समय वेस्ट करते हैं। ब्राह्मण मेजोरिटी तो पुरुषार्थी है और शूद्रों की आदत छोड़ दी है, पर कभी कभी किसी में आ जाती है। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? फरिश्ता बनने के लिए नेचुरली है तपस्या करनी पड़ती है। और तपस्या माना साधारण योग नहीं, पावरफुल योग है। और ज्यादा समय तो बाबा रोज हमको शिक्षा देते हैं, देही अभिमानी बनो, एक की लगन में मगन रहो, बाबा हमारा सहारा, तो सब संबंध बाप से अनुभव करना है। एक कहते हैं ना, एक बल एक भरोसा, तो बाबा से बल लेना है और विश्वास निश्चय बाबा के ऊपर। तो यहाँ भट्टी में आए हो, अभी भी एक दो दिन है, तो जिस संबंध का अनुभव अभी तक नहीं किया है, उस संबंध का अनुभव करना, क्योंकि बाबा को कहते हैं माता पिता बंधु सखा विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, साजन बालक सब संबंध अनुभव करना है, प्रयोग करना है। क्या है कि हमारे पास एक माता थी, उसको खुद 5 बच्चे थे, पर मेरे पास आए कि हमको हमारी लौकिक माँ ने सुख नहीं दिया, हम बच्चे थे तो वो नौकरी पर अरे धंधे पर चली जाती थी, बच्चों को देखती नहीं थी, इसलिए मैं माँ को कह नहीं सकती हूँ कि माँ मैं तुमको प्यार करती हूँ, विदेश में तो जबानी बोलना पड़ता, यहाँ कोई नहीं कहेंगे कि माँ तुमको प्यार करती हूँ या बाबा तुमको प्यार करती हूँ, पर वहाँ तो बोल कर बताना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई भगवान तुमको माँ बाप के रूप में मिला है, तुम क्यों रोती हो? एक्सपेरिमेंट करो। तो उसने क्या शुरू किया, रोज खाते समय समझती थी जैसे माँ मुझे खिलाती है, सोते समय समझती थी माँ मुझे लोरी गा के सुलाती है, और वहाँ तो ठंडी बहुत होती है ना, तो ब्लैंकेट में लपेट कर मुझे सुलाती है, और हफ्ते के बाद मेरे पास फिर आई, कहती है अभी तो मुझे माँ का प्यार बाबा से मिला, और अभी मैं मेरी माँ को कह सकती हूँ कि माँ मैं तुझे प्यार करती हूँ। और किसी को बच्चा नहीं है तो बाबा को बच्चा बनाना पड़े, क्योंकि लोग हैं बच्चे के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। तो हमारे पास बम्बई में एक युगल था, बहुत कोशिश की पर बच्चा नहीं था। ज्ञान में आए तो मैंने कहा चलो बाबा को अभी बच्चा बनाओ, तो क्या करने लगे, रोज बाजार जाए, जो खरीदारी करे अपने लिए सेंटर के लिए भी करे, कपड़ा खरीदे अपने लिए तो भोग का कपड़ा ले आवे, सब्जी ले आवे, रोज ले आवे, फिर उसको बच्चे की खोट ना रहे। तो अपना प्रयोग करना है, कभी फ्रेंड बनाना है, कभी साजन बना के सारा दिन साथ में रहो, खाओ पियो, उठो बैठो, चलो घूमो फिरो साजन के साथ, फ्रेंड के साथ। मेन बात है, बाबा कहते हैं नस्तो मोहंगा स्मृति लब्धा, शरीर से भी न्यारा बाबा का, शरीर के संबंधियों से न्यारा, और अपने वस्तु वैभव से न्यारा, जैसे ब्रह्मा बा न्यारा और प्यारा रहा न, प्यार सबको किया, लौकिक अलौकिक, परंतु लौकिक साथ में रहते हुए न्यारा। जब लड़के ने लड़की ने छुट्टी ली, खुशी से छुट्टी दे दी, जैसे दूसरों को छुट्टी दी, दूसरे तो जो कोई कुछ लाए थे तो कहा बाबा मैं लाई थी लाओ, तो बाबा तो जाने जाना ना था, वो जानता था कि ये यज्ञ में चल नहीं सकेंगे, तो उनका बाबा ने रख दिया था। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड तक बेच दी थी, परंतु उन्होंने रख दिया। जब उन्होंने जाना था कहा बाबा हमको हमारा गहना पैसा दो, बाबा ने फौरन दे दिया। और जब बेटा नारायण जा रहा था 5 रुपया, आबू तो अहमदाबाद टिकट बस काम, मेरा तो कुछ है नहीं, तो तुम कुछ लाए नहीं हो तो जाओ ऐसे। बेहद का वैराग्य चाहिए। क्योंकि वैराग्य नहीं तो त्याग नहीं तो तपस्या नहीं। क्योंकि कई ब्राह्मणों को खाने में इंटरेस्ट होता है, सोते हैं बहुत दिन हुआ भेलपुरी नहीं खाए है, पकौड़े नहीं खाए हैं, तो कुछ न कुछ खाने में इंटरेस्ट होता है तो बनाते हैं। किसी को गृहस्थी है तो व्यवहार में जाना पड़ता है, शादी वगैरह में तो इंटरेस्ट होता है कि चलो लेटेस्ट कलर की साड़ी पहने आदि आदि, गहने भी पहने, हर दिवाली कुछ न कुछ खरीदना है, घूमने का शौक होता है। कहते ये तो विकार तो नहीं है ना, तो घूमने का शौक होता है, किसी को म्यूजिक का शौक होता है, किसी को स्विमिंग तैरने का शौक, किसी को सर्फिंग का शौक। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो क्या है, समुंदर किनारा हर शहर के पास है, तो हमारी बहनें समुंदर के पास जाती है तो करती है कूदे समुंदर में। और एक भाई था, वो क्लास पूरा हुआ सर्फिंग करने का, अभी रहा नहीं सेंटर में, नहीं तो सेंटर में था, सर्फिंग का शौक। एकांत प्रिय बनना है, क्योंकि क्या होता है कई भाई बहने जैसे भी फ्री होंगे क्या करेंगे, टेलीफोन उठाएंगे, फ्रेंड्स को फोन करेंगे, क्या है कैसे हैं, क्या चलता है क्या नहीं चलता है। और कई है कंप्लेन करते हैं कि मैं तो अकेला वन फील करती हूँ, अभी बाबा की कंपनी है वो नहीं लेते तो नेचुरली अकेले फील करते हैं। एकाग्रता चाहिए तपस्या के लिए, एकाग्रता चाहिए। एक नाम इकोनॉमी, देखो बाबा एक तरफ इकोनॉमी भी करते थे तो एक तरफ उदार भी थे, जिसको जो चाहिए दे देते थे। विशेष यहाँ ठंडी में लेबरर्स के पास यदि गर्म कपड़े नहीं होते थे, उसी समय लच्छू दादी को कहते थे, लच्छू बेटा इसको स्वेटर दो। और अभी भी ठंडी के दिनों में क्या है, हर एक लेबरर को एक ब्लैंकेट मिलता है। तो बाबा ने जो सिस्टम शुरू की, दादियों ने चलाई, अभी भी यज्ञ में वो सिस्टम चलती रहती है। और मुंबई दिल्ली से हम लोग फ्रूट खरीद के आते थे तो बाबा पूछते थे क्या प्राइस दी, तो बाबा को मालूम होता था कि एप्पल और आम और ये किस प्राइस का है। तो यदि किसी ने प्राइस ज़्यादा दी तो कहते थे खरीदारी करने नहीं आते, बुद्धू है। पवित्रता तो पहले चाहिए युग के लिए, संपूर्ण पवित्र नहीं तो योग नहीं, योग नहीं तो पवित्र नहीं। तो पवित्रता का और योग का गहरा कनेक्शन है। और हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि करना ही है, अलबेलापन आलस्य न हो। रात को तो देरी से सोए हैं, सारा दिन तो कर्म योग करना है, फिर अमृत वेला क्यों उठे। अमृत वेला उठने से सारा दिन नींद आती रहेंगी, इससे तो चलो कर्मयोगी बन कर रहेंगे। बाबा के तो बच्चे हम हैं ही, ऐसे करके ढीलापन ना हो। तो ये पक्का बुद्धि में रखना है कि बाबा के साथ रहना है, सेवा साथ करनी है, साथ चलना है और बाप समान बनना है। तो इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना, शरीर का भान छोड़ते जाओ, डबल लाइट रहना, मैं आत्मा लाइट हूं और जिम्मेवारी नहीं मेरी, सब कुछ बाबा का। करण करावनहारो है, निमित्त हम है। देखो प्रकाशमणि दादी देश विदेश के शुरू में तो सेंटर्स चलाती थे, पर हमेशा लाइट सवेरे 4 बजे देखो, रात को 10 बजे देखो लाइट। विदेशी लोग पूछते थे, दादी आप इतनी हर्षित लाइट कैसे रहती है, क्योंकि वो सोने जाती थी 2 मिनट में नींद आ जाती थी, कोई चिंता नहीं। तो दादी कहे, मैं तो निमित्त हूँ, बाबा का यज्ञ है, बाबा करण करावनहार है। तो फरिश्ता माना किसी से भी रिश्ता नहीं सिवाय बाप के। और बुद्धि के लिए एक ही रास्ता परम धाम का। स्नेह स्वरूप और फरिश्ते के जो चित्र होते हैं ना, छोटा बच्चा तो निर्दोष प्योर बच्चे जैसा, अंग्रेजी में कहते हैं फरिश्ता नेक्स्ट टू गॉड, परमात्मा सबसे ऊंचा, पीछे फरिश्ता। उनका कार्य है विश्व कल्याण करने का, गाइड बनके हमको परमधाम घर ले जाते। ईश्वर का मैसेंजर है, गुणवान है, खजानों से भरपूर है, रक्षक। कई लोगों को परमात्मा की रक्षा का अनुभव होता है। एक लड़की थी 5-6 साल की, माँ के साथ जा रही थी और वहाँ सिंक होल था, कवर नहीं था, तो वो गिर गई, सिर्फ 1-2 इंच बाकी रही थी। तो उसने देखा फरिश्ता ने उसको बचा लिया। माँ को पूछती है, माँ तुमने देखा फरिश्ता? माँ कहे, मैंने तो नहीं देखा, पर उसने अनुभव किया कि फरिश्ता उसको बचा रहा। एक माता थी, 4-5 बच्चे थे और शरीर छोड़ दिया, तो रोज रात को बर्तन जो सिंक में पड़े होते थे, रोज रात को आके साफ करके जाते थे। तो फरिश्ता है निर्बल में बल भरता है, तो इसलिए फरिश्ता सूक्ष्म वतन में होता है और सूक्ष्म शरीर, हड्डी मांस का शरीर नहीं। तो इसलिए हमें देखना है कि ये स्थूल शरीर को देखना नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि जब किसी को बच्चा होता है तो क्या कहते हैं, कोई पूछे ना कितने बच्चे हैं, भगवान ने जो दिया। धन कितना है, भगवान ने जो दिया, फिगर नहीं बताएंगे। हाँ, तो बोलने के लिए कहते हैं भगवान ने दिया, पर सचमुच ये मानना है ये भगवान ने दिया है। मैं माँ हूँ या बाप हूँ या ये मेरे मामा है काका है, ये भावना हो। तो जितना देहभान से और लौकिक से न्यारे रहेंगे तो बाबा के प्यारे रहेंगे। ओम शांति।
तो दीदी ने आप सभी को सुंदर युक्तियां दी। अभी आपको खुला अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। दीदी से जो चाहे आप प्रश्न करो, दीदी उसका उत्तर देगी। आपका प्रश्न कोई भी हो सकता है, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, या दीदी के पर्सनल अनुभव का, ज्ञान में कैसे आए, विदेश सेवा कैसे की, यहाँ फिर वापस आए, तो अनुभव से संबंधित या ज्ञान योग धारणा सेवा से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी के मन में हो तो पूछ सकते हैं। जो उठे सो अर्जुन, आ जाइए।
थोड़ा भाई इस तरह
ओम शांति। अभी दीदी जी ने बताया कि एक माँ रात को बर्तन मांज के चली जाती थी, तो कैसे एक फरिश्ता बर्तन मांज सकता है?
आपने एग्जाम्पल दिया ना कि एक माता के चार पांच बच्चे थे, शरीर छोड़ दिया माता ने, तो उसको जो संस्कार था घर में बर्तन मांजने का, तो मरने के बाद भी वो आके बर्तन मांज के जाती थी, तो इसमें फरिश्ता कैसे बर्तन मांज सकता है, उनका क्वेश्चन है।
फरिश्ते को सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे भूत का होता है ना। भूत का किसी ने अनुभव किया है? वो भूत है ना, सूक्ष्म शरीर लेकर योग ने अनुभव अपना सुनाता है कि जैसे इतना छाती दाबता है, वो हाथ उठाना चाहती है उठा नहीं सकती है, चिल्लाना चाहती है चिल्ला नहीं सकती है, तो जैसे भूत है ना वो हैरान करता है, ऐसे फरिश्ता सूक्ष्म शरीर लेकर
मदद
करता है।
और कोई प्रश्न? जो ओटे सो अर्जुन, बहनों से हो गया, भाई में, भाइयों में से कोई पूछेगा? हाँ जी आ जाइए, रेडी रहिए, वक्त नहीं लीजिए ज्यादा, क्योंकि ये बीच का टाइम फिर ऐसे वेस्ट हो जाता है। जिसको पूछना है अगला रेडी रहे।
दीदी जी को ओम शांति, बाकी सभी सभा को ओम शांति। क्वेश्चन सो हजारों होते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन दादी ये है कि हम जो कहते हैं चलो बाबा के पास उड़ चलो, चलो बाबा के पास उड़ चलो, तो हमें परम धाम में जाना है या सूक्ष्म बदन में बाबा के पास जाना है? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम भगवान से सबसे कहते हैं, दुनिया से भगवान का परिचय देते हैं कि बाबा आया हुआ है, हमने अपनी आंखों से अव्यक्त बतन मिलाया, बतन से अव्यक्त मिलन खूब दादी के द्वारा मिलाया, लेकिन अब हम कौन से कैसे कहें कि भगवान आया है, क्या स्पष्टीकरण करेंगे उनके लिए?
एक एक प्रश्न पूछ,
एक एक समय में एक प्रश्न पूछना, ठीक है अभी तो हो गया। हाँ तो दीदी इनका प्रश्न है, उड़ चलो जब कहते हैं तो कहाँ जाना है? अव्यक्त वतन में जाना है, परम धाम में उड़ के जाना है। जब हम कहते हैं चलो बाबा के पास उड़ चलो, तो कहाँ उड़ के जाना है, सूक्ष्म वतन में या परम धाम में?
आपके ऊपर है। सूक्ष्म वतन में जाना है बुद्धि योग से जा सकते हैं, परम धाम में जाना है बुद्धि योग से जा सकते हैं, हरेक के ऊपर।
दीदी दूसरा प्रश्न था कि अभी तक तो हम कहते थे कि बाबा आया हुआ है और आते भी थे, अभी तो बाबा ने साकार में आना छोड़ दिया है, तो अब कैसे कहें हम लोगों को कि बाबा आता है।
देखो, जिसको बाप में निश्चय है वो तो छाती ठोक कर कह सकते हैं हमने भगवान को जाना है, और मैं तो कहती हमने तो बाबा से बात की है, खाया है पिया है बाबा से साथ, क्योंकि बाबा टोली भी खिलाते थे। तो ये अपने निश्चय पर है, क्योंकि अनुभव किया है, जिसने अनुभव किया है पक्का निश्चय है वो कह सकते हैं कि हमने अनुभव किया है।
और कोई पीछे से आना, पीछे से
शांति। मेरा प्रश्न है, जैसे हम तो ज्ञान में चलते हुए तो 8 साल होता है लगभग, है ना, तो बाबा मिलन में एक बार आए, है ना, तो दादी गुलजार बीमार थी तो हमने बाबा को देखा नहीं ना, जैसे तो जैसे अब हम मतलब क्या क्या सोचे, मतलब जैसे अभी तो बाबा मिलन होता है तो ये क्वेश्चन होता है कि ना मतलब कैसे अनुभव करें, कभी कभी ये फील होता है कि हमने नहीं देखा बाबा मिलन दादी को।
वही प्रश्न है दीदी, पहले वाला ही, कि अभी वीडियो से देखते हैं, साकार में नहीं देखते हैं, तो कैसे हम समझे कि बाबा आया है।
भगवान देखने की चीज नहीं, अनुभव की बात है ये, क्योंकि मिलन नहीं किया है परंतु प्राप्ति की है, तो कह सकते हैं कि हमें भगवान से ये मिला है। हमारे पास तो क्या है, भाई लोग ड्राइविंग करते हैं ना, पार्किंग मिल गई थे बाबा ने मुझे दिया, बाबा ने पार्किंग दे दिया, तो क्या है कि छोटी मोटी बातों में देखते हैं कि बाबा से कुछ न कुछ फायदा हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि बाबा से हमें ये मिला है, अपने मन की शांति मिली, परिवार में शांति हुई, तो कह ही सकते हैं ना कि अभी तक हमने कोशिश की परंतु शांति नहीं मिली थी, अब हमको शांति मिली है या प्यार मिला है, क्योंकि ये तो सूक्ष्म अनुभूति करने की है, प्यार की, शांति की, सुख की, क्योंकि बाबा हमें कोई भौतिक धन नहीं देते हैं परंतु संतुष्टता, शांति ये मिल सकती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान को हम ढूंढते थे, इधर उधर जाते थे, भक्ति में बहुत भक्ति की, कुछ मिला नहीं, टेम्पररी शांति मिली, अभी हमको परमानेंट शांति मिलती है।
ओम शांति दीदी जी, मैं भी 2016 में जब पहली बार माउंट आबू आई, बस खाली सुन के ही आई थी कि वहाँ पर भगवान आते हैं, और भाग्यवश हमने बाबा का रथ भी देखा, दर्शन किए थे, बाबा आते हुए तो नहीं देखे, लेकिन मुझे पहले दिन ही अलौकिक अनुभूति और बहुत अच्छे स्वप्न यहाँ पर मैंने देखे, जो बाबा सत्यु की नज़ारे कहते हैं। लेकिन मैं दीदी जी से ये पूछना चाहती हूँ, आप तो इतने रॉयल घराने से, इतने पढ़े लिखे उस समय के, आप कैसे यहाँ पर समर्पित हुए, कैसे आप यज्ञ सेवा में आए, जरा मैं आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ। थैंक यू दीदी।
हाँ दीदी, आपका अनुभव कैसे आप बाबा के यज्ञ में सरेंडर हुए,
कैसे निश्चय हुआ?
हाँ,
जब मैं ज्ञान में पहले आए ना, मेरे दो प्रश्न थे। शिव बाबा को तो मानना सहज है, पर ब्रह्मा के तन में आते हैं ये कैसे मान? दूसरा प्रश्न था, 5000 वर्ष का चक्कर है, वो बहुत रिपीट होता है, ये कैसे मान? फिर जब मैंने ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी सुनी, कई दादियों का अनुभव सुना कि कैसे बाबा ने उनको मदद की। क्या है कि एक दादी थी, उसका पति और भाई कुछ थोड़े ही समय में शरीर छोड़ा, वो बाबा के पास आई। बाबा कहे, तुम कौन हो? कहा, मैं दुखी आत्मा हूं। फिर बाबा ने सिर्फ 5 मिनट योग कराया और समझाया कि तुम आत्मा हूं, ये परमात्मा है, बिंदी रूप है, याद याद। फिर जा रही थी, बाबा ने क्या पूछा, फिर से पूछा, कौन हो? मैं सुखी आत्मा हूं। और एक बहन थी, उसको डिसेंट्री हुआ था। डिसेंट्री समझते हैं? डायरिया अलग है, डिसेंट्री अलग। डिसेंट्री में चिकट होता है, थोड़ा होता है। हाँ, तो उसको डिसेंट्री हुआ था और उन दिनों में वो लोग क्या करते थे, डॉक्टर को पास नहीं जाते थे। क्या डॉक्टर तो कलयुगी शूद्र है, वो हमारे शरीर को हाथ ना लगाऊंगा। तो बाबा ने संदेशी को भेजा कि भाई संदेश ले आओ, क्या ट्रीटमेंट करें। तो संदेशी कहे कि उसको अनार का जूस घंटे घंटे दो। अब उस समय अनार की सीजन नहीं थी, तो ब्रह्मा बाबा ने भाव विश्व किशोर को कहा, जाओ शॉप में अनार ले आओ। और विश्व किशोर भाई को बाबा पर इतना विश्वास था कि बाबा ने कहा लाओ तो मिलेगा। तो वो क्या करता था, क्योंकि किसी ने बाहर तो डिस्प्ले नहीं किया था अनार, तो वो पीछे से जाता था और देखता था कि कहाँ छिपा हुआ अनार तो नहीं है, और उसको मिल गया, ले आया और चम्मच चम्मच घंटे घंटे देते रहे। अच्छा हो गए। निर्मल शांता दादी को 104 डिग्री टेम्परेचर था, यूजुअली 97-98 होता है। तो उसने भी कहा मुझे डॉक्टर की दवाई नहीं लेनी। तो उन दिनों में संदेशी का पाठ अच्छा था, तो संदेशी गई और संदेश ले आई, कि उसको आइस कोल्ड वाटर में स्नान कराओ। तो ब्रह्मा बाबा ने दादी को बुलाकर पूछा, करेंगे स्नान? हाँ, बाबा ने कहा है ना, जरूर करूंगी। तो बाबा ने किसी को ऑर्डर दिया कि भाई आदि बाल्दी आइस कोल्ड वाटर ले आओ। वो बाथरूम में रखा। फिर निर्मल आदि तो तैयार थी, पर बाबा को दया आई कि बुखार में इतना ठंडा पानी से कैसे स्नान करेंगी। तो फिर से संदेशी को भेजा कि सचमुच आप चाहते हैं कि ये इतने ठंडे पानी से स्नान करे? तो शिव बाबा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ परीक्षा लेता था, जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको ये कहते हैं ना आइस का ऊपर रखते हैं, छाती पर रखते हैं बैग, आइस बैग, ये करो और हो गया। अच्छा, तो ऐसी ऐसी स्टोरी जब सुनी दादियों की, तो मैंने कहा कि ठीक है, सच्चा है। तो फिर एक बात मान ली तो सब बातें मान ली। 5000 वर्ष का चक्कर है, रिपीट होता है, शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं, मान लिया और चल पड़े।
और चल पड़े तो देखो कैसे फरिश्ते बन गए और हमारे लिए मार्गदर्शक बन गए। तो बाबा को जीवन देते हैं, विश्वास करते हैं, तो बाबा हमें भी सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है, इसलिए हमारे ही दिल का विश्वास काम करता है। तो चलिए, समय हो गया है, अभी हमें समय की सीमा को पार नहीं करना है। बाद में कभी जो क्वेश्चन है फिर कभी ले लेंगे, क्योंकि समय को भी देखना है। दीदी के आयु को देखो, हाँ, उनके राइट टाइम पे जाके फिर भोजन और आराम करना होता है। तो दीदी आपके बीच में रहे, आपको क्या लगा, क्लास दीदी करा रही है या पर्सनल गाइडेंस दे रही है, ऐसा लगा? लगा सभी को पर्सनल गाइडेंस, दीदी पर्सनल मिल रही है? हाँ, कई बार हम जाते हैं ना दीदियों के दरवाजे पे, फिर वहां जो खड़े होते हैं गेट पे, क्या काम है? बस मिलना है, क्या एक बात पूछनी है, वो तो क्लासेस में पूछ लो ना जाके। नहीं नहीं वो हो गया, दीदी से पर्सनल लेना है, इसीलिए बहाना चाहिए होता है ना जाने के लिए। तो पर्सनल गाइडेंस मिली, ऐसा लगा सभी को? हाँ, तो हम दीदी को इसीलिए बुलाते हैं कि सभी को ऐसी फीलिंग आए कि हम पर्सनली, दीदी हमको मिल रही है, ऐसे नहीं कि कोई क्लास करा रही है। ऐसी भाषा किसी को आई? किसी को नहीं, पर्सनल। तो दीदी को बहुत बहुत थैंक यू जो अपना अमूल्य समय निकाल कर आए और हमें भरपूर किया, उनके सानिध्य में बैठने का हमें अवसर मिला। हमने कहा ना ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, बाहर की दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो हो उनके साथ एक घंटा बिता सकते हैं आप। हाँ, कितना बड़ा भाग्य है कि और देखो उसमें भी दीदी की निर्माणता। दीदी जब आई है आपका बाजार लगा हुआ था, लेकिन दीदी ने आपको कुछ बोला? कितनी निर्माण है दीदी। तो हमें ये सब प्रैक्टिकल जीवन से सीखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अभी याद का गीत बजेगा और उसी में दीदी आप सभी को दृष्टि देंगे, आप दृष्टि का लाभ लेना।
हूँ।